सबसे पहली अनदेखी नेमत ये है कि अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान माँ बाप के यहाँ पैदा किया, जो हर लम्हे आपको नेकी और तकवा पर चलाने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। ज़रा देखे तो सही उस इंसान की तरफ जो इस्लाम कबूल करता है, लेकिन उसके माँ बाप इस्लाम पे नहीं है, मुसलमान नहीं होते, तो इसके दिल पर क्या गुजरती है? इसे कितनी तकलीफ़ होती होगी, वो कितनी कोशिश करता है कि इनको दोजख के अज़ाब से बचा सके, वो दूसरों को कितने रश के अंदाज़ से देखता है। इस पे एक स्पीकर हैं, लंदन में होते हैं, तो मैंने उनका एक छोटा सा क्लिप देखा था। ऐसे आँखों से आंसू थे कि पूरा मुंह गीला हुआ हुआ था, और रो रो के वो जो दुआ है रब्बिर हम हुमा कमा रब यानी सगीरा, तो उसमें वो मुसलमानों को हम सबको ये कह रहे थे कि ओ मुस्लिम तुम्हें इस चीज़ की कदर नहीं। मैं बताता हूँ कि मैं कहता कि जब कुफर पे थे तो मेरा बाप मुझसे इतना प्यार करता था, ही इज़ वॉज वेरी गुड मैन। लेकिन अब मैं ईमान पे आया हूँ और अब मेरे उस बाप का इंतकाल हो गया और मेरी मजबूरी देखो कि मैं उसके लिए दुआ भी नहीं कर सकता। इतना वो रोया शख्स कि पूरा उसका मुंह गीला हुआ हुआ था कि वाकई अगर हमारे माँ बाप आग में चले जाएं तो अच्छा लगेगा, अगर वो कफर पे होते तो हमें अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता। तो ज़रूर इस चीज़ की कदर करें, हमेशा इस चीज़ को देखें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। इमाम शुरैख रहमतुल्लाह कहते हैं, अगर किसी मुसलमान को अल्लाह ताला की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो इस पर तीन किस्म के इनामात होते हैं। नंबर एक, ये आजमाइश इसके दीन के हवाले से नहीं होती, मतलब दुनियावी तकलीफ़ आ गई ना, लेकिन चलें शुक्र है दीन पे तो नहीं आई ना, दीन तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। दूसरी बात, जो आजमाइश पहले थी ये इससे कम होती है, ये तो तकदीर में लिखी थी होकर रह गई, यानी ये बातें सोचकर वो सब्र करता है तो फिर अल्लाह ताला पर इस पर भी इससे राज़ी होता है, जो बहुत बड़ी नेमत है। बात बात है, देखिए सबसे बड़ी आजमाइश ईमान की आजमाइश है। अस्हाबुल बुरूज का किस्सा कुरान में पढ़ लीजिए, कुतिला अस्हाबुल उखदूद, उखदूद वाले लोग थे, सूरत बुरूज में उनका किस्सा आता है। फिरौन ने जो जुल्म किए थे बनी इसराइल पे उसका तस्करा पढ़ लीजिए, फिरौन ने अपनी बीवी हज़रत आसिया पे जो जुल्म ज्यादती की थी उसका तस्करा पढ़ लीजिए। हमें तो ऐसी कोई आजमाइश नहीं आई, हमें तो नमाज़ पढ़ने पे मार नहीं पड़ती, हमें तो निकाब करने पे जुर्माना नहीं देना पड़ता, फिर हम रोते हैं, फिर हम दुखी हैं। अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया, इतनी नेमतें दी, लेकिन हम इन नेमतों की कदर नहीं करते। तो आज के बाद अपनी ज़िंदगी को एक और एंगल से देखिए, एक और शुक्रगुजारी के जज्बे से देखिए कि अल्लाह तूने मुझे वो दिया जो तूने किसी को नहीं दिया। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि गैर मखसूस नेमत ये है कि आप अपने गिर्दो नवाह में नज़र दौड़ाइए और देखिए वो लोग किस किस्म के खौफ, भूख, इफलास और बीमारियों में मुब्तला हैं, और आप अमन और अमान और बाहमी उल्फत और मोहब्बत के साए में इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के किसी से नहीं डरते। आप देखिए कि हमारे ख़ानदान और हमारे घरों में काम करने वाली मासियाँ और सड़कों पर काम करने वाले मज़दूर, क्या बेचारों के पास भूख है, इफलास है, बीमारियां हैं, बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं हैं, जूते के पैसे नहीं हैं। हमारे अपने रिश्तेदारों में कितने होंगे जो महीने की पहली तारीख का इंतज़ार करते होंगे, और कितने होंगे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे क्योंकि बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते। शुक्र अल्लाह का हमें ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है, क्या हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? आप देखिए कि शुक्र वाकई बंदे को तोड़ के रख देता है, बंदा कहता है कि अल्लाह मैं इस काबिल था ही नहीं जो तूने मुझे दे दिया। तो हमेशा अपने इर्द गिर्द वालों को देखें, अब हम क्या करें फिर? अगर अल्लाह ने हमें दिया उनको ढूंढें जिनको नहीं दिया, उनकी टेक केयर करें, कोई इश्तहार लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नुमाइश की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मजबूर और मफलूज जो लोग हैं उनकी घर बैठे मदद करने की ज़रूरत है ताकि वो भी इस ज़िंदगी से बेहतरीन फ़ायदा ले सकें। फिर चौथी नेमत, जो चाहता है कि वो अल्लाह की ख़ास नेमतों को पहचाने जो अल्लाह ताला ने इसे सेहत और तंदरुस्ती के हवाले से दी हैं, तो वो बीमारों, मरीज़ों, टूटे हुए अज़ा वालों और लूले लंगड़े लोगों की ज़्यारत करे। इसे चाहिए कि ज़रा हस्पतालों का दौरा करे और देखे कि कितने बीमार रोते हैं और कितने ज़ख्मी ज़ख्मों से चूर हैं, कई समात और गोयाई खो बैठे हैं या इनमें से कोई एक हासा खो बैठे हैं, और कितने ही ऐसे मिस्कीन हैं जो थोड़ी सी नींद के लिए तरसते हैं या दर्द से थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं पा सकते। तब आप अल्लाह की इन गैर मखसूस नेमतों को पहचान सकते हैं کیونکہ ہر چیز اس کے متضاد کے ذریعے زیادہ بہتر انداز سے پہچانی جا سکتی ہے۔ بے شک انسانی اعضاء میں سے کسی ایک عضو کے بدلے کروڑوں روپے بھی کافی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ طلب شدہ عضو واپس نہیں مل سکتا۔ ایک آدمی جناب یونس بن عبید کے پاس اپنی تنگ دستی کی شکایت لے کر آیا تو یونس نے کہا، کیا تم 1 لاکھ درہم کے بدلے اپنی آنکھیں مجھے دو گے؟ اس نے کہا، نہیں۔ یونس نے کہا، اپنے ان ہاتھوں کے بدلے 1 لاکھ درہم لے لو۔ آدمی نے کہا، نہیں۔ تو یونس نے کہا، چلو ٹانگ کے بدلے 1 لاکھ دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، نہیں۔ یونس نے اس آدمی کو اللہ کی یہ نعمتیں یاد دلائیں کہ میرے خیال میں تمہارے پاس تو ہزاروں لاکھوں ہیں، تم پھر بھی ضرورت مندی کی شکایت کرتے ہو۔ بات سچ ہے، ہم دیں گے 1 آنکھ اپنی، گاڑی لے لو اور 1 ٹانگ دے دو، 1 کنال کا گھر لے لو اور مجھے اپنی 1 آنکھ دے دو، دیں گے؟ تو پھر آپ بتائیے، ہم تو کروڑ پتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سبب بناتا ہے۔ جیسے ایک کسی کی بات سنی تو مجھے اس پہ سوچ کا موقع ملا کہ بعض دفعہ انسان سفید پوشی میں رہتا ہے نا، بہت زیادہ ہوشیاری چلاکی نہیں دکھاتا اور قناعت کے ساتھ جیتا ہے۔ اب بعض لوگ ڈراتے ہیں، ہائے بچوں کے رشتے ہوں گے، کیا ہوگا، بچیوں کی شادیاں ہوں گی، اتنا تو جہیز دینا ہے، اتنا تو مہنگی شادی ہے۔ اللہ سبب ایسا لگا دے گا کہ وہ آ جائیں گے جو بغیر جہیز کے آپ کی بچی لے جائیں گے، اور وہ آ جائیں گے جو آپ کا بیٹا شادی کرے گا تو وہ اس سے کہیں گے، ایک فالتو چیز بھی نہیں چاہیے ہمیں، حق مہر میں کچھ بھی نہیں لینا دینا۔ تو وہ جو کمانا تھا وہ دے ہی دینا تھا نا، تو اللہ نے وہ بھیج دیا جن کو چاہیے ہی نہیں، تو برابر ہو گیا نا۔ تو پھر وہ شخص کروڑوں کا فائدہ لے چکا ہے، لاکھوں کا لے چکا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ قناعت لائے۔ جس بندے کے پاس صبر اور شکر ہے، قناعت ہے، جو میرے رب نے دیا وہ بہترین دیا، جو مجھے دیا وہ بہترین دیا، یاد رکھیے گا اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا میرا کام کیا ہے؟ میرا حال اس سیریز میں میں نے دسیوں بار یہ بات بولی ہے کہ اپنی موجودہ حالت پہ راضی ہو جائے۔ اے مالک، جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس پہ بڑی مطمئن ہوں اور میں اس پہ راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور ایک اور بھی روایت کہیں پڑھی تھی کہ جو اللہ کے تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے نا، دیکھیے اللہ کا تو کچھ بھی تھوڑا نہیں ہے دیا ہوا، لیکن بالفرض آپ کا گمان ہے کہ اس نے تھوڑا دیا ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ وہ پھر بڑی بڑی نمازیں، تہجدیں اور وہ بڑے بڑے صدقہ خیرات نہیں مانگے گا۔ اللہ کہے گا کہ جب تو دنیا میں میرے تھوڑے پہ راضی تھا تو میں بھی تیرے تھوڑے پہ راضی ہوں، اور اگر آپ نے میں نے ڈھیروں ڈھیر مانگا اور یہ دے دے اور وہ دے دے اور کیا دیا اور دوسروں سے اچھا دے دے اور اس سے اچھا دے دے، تو پھر ہو سکتا ہے اللہ بھی کل آپ سے مجھ سے بڑی بڑی باتیں مانگے، بڑی بڑی اطاعت مانگے۔ سیدھا سیدھا معاملہ ہے، جتنی اچھی چیز ہوگی اتنی قیمت دینی پڑے گی نا، اور جو چیز جتنی مناسب سی لے لیجئے، بہت زیادہ کوئی پمپی گلیمری نہ ہو تو اس کی قیمت تھوڑی ہوگی۔ اللہ سے کہا کریں کہ اللہ اگر زندگی میں کوئی کمی بھی ہے نا، بظاہر لوگ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، تو اے اللہ مجھے اس کے بدلے میں آخرت کی بہاریں دے دے، میرا حساب آسان کر لینا، اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کرنا، میری نمازیں بھی تو ٹوٹی پھوٹی ہیں نا، میری باتیں بھی تو واجبی ہیں نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہماری تو واجبی ہے، کچھ کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کی قسمت تو بس ایسی ہے بیچ کی، تو بھائی ہماری باتیں بھی تو ایسی ہیں نا، اللہ ہمیں اسی میں پورا کر لے۔ یعنی اللہ تو ہمارا برابر کا معاملہ لے جا، ہم اس پہ بھی بڑے خوش ہیں، کچھ بھی نہ دے بس عذاب سے بچا لے تو بھی بڑے خوش ہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ فضیل بن عیاض کے بارے میں روایت ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی تو رونا شروع کیا، الم نجل لہ عینین ولسانا وشفتین، سورۃ بلد 7-9، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ ان کے رونے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ دو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، کیا تو نے ایک رات بھی اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور کیا تو نے ایک رات بھی ایسی گزاری کہ زبان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا ہو جس سے تو بولتا ہے، اور اس انداز سے آپ نعمتوں کے بارے میں بیان کرتے رہے؟ اور انداز بھی کیا نا، الم نجل لہ عینین، سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم نے دو آنکھیں اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ پھر پانچویں دیکھیے، ایسی نعمت جس کی طرف انسان کا خیال بھی نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صبح جان کی سلامتی اور تندرستی اور 1 دن کے کھانے کی موجودگی میں اٹھا، یعنی جب اٹھا تو جان سلامت تھی، जिस्म तंदुरुस्त था और एक दिन का खाना मौजूद था, तो गोया कि इसको दुनिया की सारी नेमतें मुयस्सर हो गई। बताइए क्या फिर मैं और आप ऐसे लोगों में नहीं हैं? अल्लाह अकबर। बेशकमनो आफियत और इसकी नेमत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ने अपने बंदों पर की हैं। बस जो आदमी अपने दीन, जान, माल और इज्जत और आबरू की सलामती के साथ दिन की इब्तिदा करे और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारे, इस हाल में घर से निकले कि इसे अपने आप और अहलो खाना और माल के बारे में पूरा इत्मीनान हो, तो वो जब काम करता है तो इस काम में बरकत होती है, अच्छी पैदावार होती है और इस पैदावार की वजह से मुल्क भी खुशहाल हो जाता है। सो अमनो अमान की वजह से इकतसादी तरक्की होती है और अमन वाले मुल्क में मालदार लोग अपना पैसा लगाते हैं, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा हासिल होता है और माल लगाने वालों को भी। इन मुल्कों की तरफ भी निगाह दौड़ाइए जहाँ अमन नहीं है, वहाँ दहशत व खौफ का आलम है, क्योंकि वहाँ किस्म किस्म के जरायम होते हैं, जैसे कत्ल, चोर बाजारी, अगवा बराए तावान, बम फटना, दहशत गर्दी। तो फिर इनकी माली हालत तबाह हो जाती है। इन मुल्कों की करेंसी जो बहुत मजबूत होती है वो गिर जाती है, इसी वजह से वहाँ गरीबी अपने पाँव जमा लेती है और इस मुल्क के एक बाशिंदे अपनी रोटी के लिए दर बदर ठोकरें खाते हैं, वतन से बेवतन होते हैं। अगर वो शुक्र अदा करते तो इनके लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की और इस नाशुक्री ने बरकतों को मिटा दिया और नेमतों को जायल कर दिया। क्या चीज़ समझ आई है? अमन, चैन, सुकून। आप देखिए, ये भी तो एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ना। जो भी हो, लेकिन फिर भी रात को सुकून से घर में सोते तो है ना। आज देखिए दुनिया के कितने मुल्कों में जंगें लगी हुई हैं, गोलियां बरस रही हैं, घर में बम पड़ता है, सारे घर वाले खुद मर जाते हैं, बच्चे स्कूल गए वहाँ से वापस ही ना आए। अल्लाह ने हमें ऐसे फितनों से तो बचाया हुआ है, हमें ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, हमें रोना धोना नहीं चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि लिबास भी ऐसी नेमत है जिनके बारे में लोग नहीं सोचते। सवारी बेहतरीन खुराक और ऐसी बेहतरीन नेमतें हैं जिनसे सब लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे हैं जो इन पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हालांकि ये ऐसी नेमतें हैं जो हमेशा इनके साथ रहती हैं। यकीनन नेमतों का कदरदान वही होता है जिससे नेमत छीन ली जाती है। वो कहते हैं ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। किसके साथ हमारा ये मामला है? नेमतों के साथ। किसी बुजुर्ग ने खुतबा ईद के मौके पे फरमाया, आपने फूलों की तरह खिलकर सुबह की और लोग गुबार में अटे हुए हैं, लोग कपड़े बनाने में लगे हैं और पहन रहे हैं, लोग दे रहे हैं और आप सिर्फ लेने में मसरूफ़ हैं, लोग गाड़ियाँ बना रहे हैं, आप सिर्फ सवारी ही कर रहे हैं, और लोग फसलें काश्त कर रहे हैं और आपका काम सिर्फ खाना है। फिर शेख भी रो पड़े और खुतबा सुनने वाले भी जब्त ना कर सके। देखिए ना, एक किसान है, बीज डालता है, फसल लगती है, काटता है, उसकी हिफाजत करता है और हम मज़े से घर में लाकर आटा खा लेते हैं। हमें भी यही कहा जाता कि जाओ पहले बीज डालो, जोतो, फिर उसमें गोडी करो, फिर मेहनत करो, रखवाली करो, फिर खाना। तो हमें अल्लाह कह सकता था ऐसा? फिर से आप देखिए कि सातवीं किस्म ऐसी गैर मखसूस नेमत जिसकी तरफ ख्याल नहीं जाता, ये है कि इंसान अपने घर में दरवाज़ा बंद किए बैठा होता है कि कोई सवाली आ जाता है और दरवाज़े पे दस्तक देता है और खाने को कुछ मांगता है। तो अल्लाह ने इस सवाली को इसलिए भेजा होता है ताकि वो जान सके कि मेरे ऊपर अल्लाह ने कितनी नेमत की है कि मैं देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं हूँ। यानी हर सवाली, बेकारी, बेगर आपको मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाने आता है क्या, कि तुम मुझसे खुशकिस्मत हो कि मैं लेने आया हूँ, शुक्र करो तुम लेने वाले नहीं हो। फिर आठवीं ऐसी गैर मखसूस नेमत जिसका जिक्र हदीस में आया है, हालांकि ये बहुत आसान सा काम है लेकिन इस पर बहुत बड़े अजर की बिशारत दी गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इंसान के जिस्म के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। हर रोज़ यानी जब सूरज तुलू होता है तो दो आदमियों के दरमियान इंसाफ से फैसला कराना सदका है, किसी की सवारी पर सामान रखवाने या उतरवाने में मदद करना सदका है, और अच्छी बात करना सदका है, नमाज के लिए उठने वाले हर कदम पर सदका है, और रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ का हटा देना सदका है। सलामी का मानी हड्डियां हैं और इसका इतलाक छोटे छोटे जोड़ों और उंगलियों की पोरों पे होता है। यानी अरबी में जो लफ्ज़ है ना सलामी, उसका मतलब हड्डियाँ और पोरे। इंसानी जिस्म 360 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से 265 हड्डियां जाहिरन नजर आती हैं और बाकी बहुत छोटी होती हैं। आप गिने जरा अपनी हड्डियां, आज तक हमने खोल के देखी भी नहीं होगी। 360 हड्डियां आपके मेरे जिस्म में, उनसे मिलके ये जिस्म बना है। जैसे बच्चों के लोगोज होते हैं ना, मुख्तलिफ ब्लॉक्स जोड़कर एक चीज बनती है। इब्ने रजब फरमाते, इस हदीस का मतलब यह है कि इन हड्डियों का बेहतर अंदाज में जोड़ना और सही सलामत होना इन नेमतों में से एक सबसे बड़ी नेमत है। इंसान को चाहिए कि इस नेमत पर सदका अदा करे, ताकि ये सदका इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र बन सके। इसीलिए तो मुजाहिद कहते हैं कि अल्लाह की जाहरी नेमतें हैं जो तुझे बताती हैं कि तू अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करे। इस रिवायत से ये बात पता चलती है कि हड्डियों का सही सलामत होना और बेहतरीन अंदाज में जोड़ना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, जिसने अपने बंदे पर की। तो हर हड्डी पर हर रोज़ एक सदके की ज़रूरत होती है। एक इंसान हर रोज़ हर हड्डी की तरफ से सदका अदा करे, तो यही सदका इस नेमत की तरफ से शुक्र तसव्वुर होगा। इस लिहाज से तो हड्डियों के बराबर सदके करने की ज़रूरत है, जो बहुत बड़ी मिकदार है। यानी जितनी हड्डियाँ अगर उतना भी सदका करें तो कितना ज़्यादा हो, ये तो इंसान के बस से बाहर है कि इतने सदके कर सके। इसलिए अल्लाह ताला ने नेकी करने के रास्ते आसान कर दिए और भलाई के बहुत से दरवाजे खोल दिए, ताकि इंसान शुक्र अदा करे। आप सोचिए ज़रा, अगर हमें हर हड्डी का सदका रोज़ देना पड़े और लाजिम हो, फ़र्ज़ हो, तो हम क्या करते, कहाँ से जाते और क्या करते। और कभी इंसान सोचता नहीं, सिर्फ दो नफिल चाश्त के, लेकिन वो भी मुश्किल लगते हैं। इसीलिए आप देखिए आगे नवी चीज़ क्या है। जितने भी कामों का जिक्र इस हदीस में, अल्लाह ताला ने सबको सदका और नेकी बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सारी नेमतों के शुक्र करने के लिए वो दो रकतें काफ़ी हैं जो आदमी चाश्त के वक्त अदा करता है। यानी नमाज चाश्त इतनी छोटी बजाते खुद अल्लाह की तरफ से एक और नेमत बन जाती है। यानी चाश्त की नमाज का एहतमाम करना चाहिए। फिर 10वीं चीज़ क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सेहत और सलामती दी। ये भी बहुत बड़ी मख्फी नेमत है। इसमें हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हो का फरमान है, सेहत और सलामती जिस्म की तकान है, जिस्म का करार सेहतमंदी है। हज़रत वहाब भी मंबा फरमाते हैं, आले दाऊद की हिकमतों में लिखा है, जिस्मानी सेहत छुपी हुई बादशाही है। आप पढ़ रहे हैं आज कितना सेहत पे बात हो रही है। बस आसार में रिवायत है कि किसी चीज़ से तकलीफ़ महसूस ना होना बड़ी नेमत है। ये भी नोट करें, कुछ लोग बड़ा ही नोट करते हैं, बड़ी महसूस करते हैं तकलीफ़, और किसी को इतनी नहीं होती। तो आपको तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही, शुक्र कीजिए। सही बुखारी में रिवायत है, हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग धोखे में रहते हैं, ख्याल नहीं करते, उनमें एक सेहत और एक फरागत है। ओ कमा काल अलैहिस्सलाम, अल्लाह की कसम रोज़े क़यामत इंसान से इस नेमत के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। अल्लाह सुबहाना तआला ने फरमाया, सूरह तकासुर आयत 8, थुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, फिर इस दिन तुमसे ज़रूर नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। तिरमिज़ी ने इब्ने हब्बान से हदीस रिवायत की है, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेशक नेमतों के हवाले से पहली चीज़ जिसके बारे में रोज़े क़यामत बंदे से सवाल किया जाएगा, इसे कहा जाएगा, क्या हमने तुझे सही सलामत जिस्म नहीं दिया था और ठंडे पानी से तेरी प्यास नहीं बुझाई थी। कितनी दफ़ा पीते हैं दिन में ठंडा पानी। सैयदना इब्ने मसूद फरमाते हैं, नईम से मुराद अमन और सेहत है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, नईम से मुराद जिस्मों, कानों और आँखों का सही होना है। कोई एक उज़ी ख़राब हो जाता तो हम क्या करते। अल्लाह ताला बंदों से पूछेगा, इन नेमतों को कहाँ इस्तेमाल किया, हालांकि वो खुद इन बातों से बखूबी वाकिफ़ है। वहब कहते हैं, एक आबिद आदमी 50 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा, तो अल्लाह ने इसे वही की कि बेशक मैंने तुझे बख्श दिया। इसने कहा है, रब तूने मुझको कैसे बख्श दिया, हालांकि मैंने तो गुनाह किए ही नहीं। बस अल्लाह ताला ने इसकी गर्दन में मौजूद एक रग को फड़कने का हुक्म दिया, इससे दर्द की वजह से वो नमाज अदा न कर सका और न सो सका। फिर इसे सुकून मिला तो सो गया। इस हाल में इसके पास फरिश्ता आया, इसने इस फरिश्ते से दर्द की शिकायत की और कहा, मुझे इस रग के फड़कने की तकलीफ़ कैसे हुई। तो फरिश्ते ने जवाब दिया, आपका रब फरमा रहा है, बेशक आपकी 50 साल की इबादत इस एक रग के सुकून के बराबर है। अल्लाह अकबर, यानी मैंने तुम्हें जिस्मानी सुकून दिए रखा, तभी तो तुम इबादत करते रहे। रोज़ सेहत होती है, कभी बीमार होते हैं, एक छींक आ जाए सबको सुनाने लग जाते हैं। सलाम बिन अबू मती कहते हैं, मैं एक मरीज़ की इयादत के लिए गया तो वो आहो बुका कर रहा था। मैंने इसे कहा, इनको याद करो जो रास्तों में पड़े हैं, और इनको याद करो जिसका कोई ठिकाना ही नहीं, ना इनकी कोई खिदमतगार है। कहते हैं, इसके बाद एक बार फिर मैं इस मरीज़ की इयादत के लिए गया तो वो अपने जी ही जी में कह रहा था, ऐ मेरे नफ्स, इनको याद करो जो रास्तों में पड़े हैं, इनको याद करो जिनका कोई ठिकाना नहीं, ना ही कोई इनकी देखभाल करने वाला है। क्या पता चला कि अगर ये नेमतें आपके मेरे पास हैं तो इनकी कदर कीजिए। आप देखिए, जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतों पे गौर व फिक्र करेंगे, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, उतना आप इस चीज़ को इंजॉय करेंगे अल्लाह के हुक्म से। यहाँ जो बात इतनी हुई, इसमें से कोई सवाल या कोई बात है तो पूछिए। एहसास हो रहा है मुझे तो आज इतनी शिद्दत से एहसास हो रहा है इस बात का कि हम इन नेमतों की कदर क्यों नहीं करते। अब हम क्या करें, ये भी एक क्वेश्चन है हमारे लिए। जी पेज 120 है, अब करने का काम क्या है। देखिए, इतना कुछ तो नेमतों पे पढ़ लिया है, अब एंड पे एक चंद बातें सम अप करते हुए। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का इल्म हो गया जिसने हमारे ऊपर की हैं, हमने इन्हें महसूस भी कर लिया, अब हमने खुद ही अपने लिए तमाम हुज्जत का एहतमाम भी कर लिया, और हमने इनके बारे में भी गौर व फिक्र कर लिया। जब हमारे खिलाफ़ हुज्जत कायम हो गई तो फिर हमारे इख्तियार में कुछ नहीं होगा। अब हमारे लिए मुनासिब तो यही है कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करें, हम इस अंदाज़ से अपने रब खालिक व मालिक का शुक्र अदा करें जो हमारे अमल से भी अदा हो, दायमी ज़िक्र व अज़कार से भी, और ऐसी इताअत से भी हो जिसमें नाफरमानी का दखल ना हो, और जो कुछ भी हमें अपने रब की खातिर करना चाहिए वो करते रहें। क्या करना पड़ेगा, दोहरा लीजिए लिस्ट को। पहली बात है कि महसूस करें, नेमतों की मौजूदगी को महसूस करें, फिर उसके बाद गौर व फिक्र करें, फिर ये सोचें कि हमारे खिलाफ़ हुज्जत कायम हो गई है, फिर इसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा, फिर अमल से भी, फिर ज़िक्र और अज़कार से भी, और फिर इताअत से भी, और नाफरमानियों से बचना है, और जो कुछ भी करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ रब की खातिर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए कि जो ज़िंदगी में कमी कोताही हुई है उसका इलाज तौबा और इस्तग़फ़ार है। तो पेज 122, तौबा इस्तग़फ़ार। अब हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे जो आज तक कमी बेशी हो गई, हम उस पर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे ऐसे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ जिनके इर्तकाब के बाद मैंने तौबा की थी लेकिन दोबारा मुझसे वो गुनाह सरज़द हुए, और मैं तेरी बख्शिश का तलबगार हूँ इन कामों पर जो मैंने तेरे लिए करने का तहैया किया लेकिन फिर मैं वो काम ना कर सका। मैं तेरी बख्शिश का ख्वास्तगार हूँ इन उमूर में जिनके बारे में मेरा ख्याल था कि सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए अंजाम दूंगा, लेकिन दिल ने इनकी अदायगी में कुछ और चीज़ें मिला दी जिनके बारे में तू ही बेहतर जानता है, यानी कामिल इखलास ना रहा। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम काम बड़ी अच्छी नीयत से शुरू करते हैं, बाद में नीयत बदल जाती है। शुरू में बड़ा जोश होता है, फिर थोड़े दिन बाद जोश ख़त्म होता है। हम कितने दफाक से कहते हैं ये करें, वो करें, ये करें, जब काम शुरू होता है सब ठंडे पड़ जाते हैं। तो ऐसी कमी कोताही पे भी अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, वबारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम फिल आलमी इन्नक हमीदो मजीद। ए अल्लाह, दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लम की आल पर जैसे तूने दुरूद भेजा इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। बेशक तू महमूद व बुज़ुर्ग है, यानी तारीफ़ किया गया और बुज़ुर्ग है, और बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आले मोहम्मद पर जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम और आले इब्राहीम पर तमाम जहानों के अंदर। बेशक तू खुद अपने आप में महमूद व बुज़ुर्गी वाला है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। ऐ अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है और तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुझ ही से बख्शिश मांगता हूँ, तेरी ही तरफ पलट कर आता हूँ, मुराद तौबा करता हूँ। इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं, सबसे कामिल और अकमल दरूद दरूद इब्राहिमी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है, यानी यही आपने अपनी उम्मत को सिखाया, इससे बेहतर दरूद कोई और नहीं। दुरूद इब्राहिमी से मुराद वो दुरूद है जो हम नमाज में आखिरी तशहुद में पढ़ते हैं, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया, इसका नाम दुरूद इब्राहिमी इसलिए रखा गया कि इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी दुरूद है। तो आप देखिए कि दुरूद पढ़ने से भी कमी पेशियाँ दूर हो जाती हैं। फिर आखिरी बात जिस पे इंशाल्लाह ये बुक और ये टॉपिक पूरा होगा, पेज 124। ए मेरे मुसलमान भाई, ये एक तेज़ रफ्तार चक्कर था जो हमने बास नेमतों के दरवाज़ों के गिर्द काटा। बात सच है, यानी अभी तक हम सारी नेमतों का इहाता नहीं कर सके, बस एक छोटा सा ट्रिप लिया या एक राउंड लगाया और बास नेमतों के अबवाब में महव हुए। बास इन लोगों के बारे में मुख्तसर सी मालूमात हासिल की जिन पर इनामात हुए। हमने अजीबो गरीब चीज़ें मुलाहजा की और बाज़ अजनबी सी मालूमात के बारे में पढ़ा, और हमने शुक्र करने वालों की अकसाम और दुनिया में इनकी कमी के बारे में मालूमात हासिल की, और हमने ये भी जाना कि एक मुसलमान को अपनी ज़ात के साथ क्या रवैया रखना चाहिए ताकि वो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने की शिद्दत को कम कर सके, और ये कि दुनिया में ऐसे काम करे जिनसे इस रोज़ की शिद्दत में कमी आ सके। और हर इस आदमी के लिए हमने अल्लाह का शुक्र अदा करने के तरीके अल्लाह के फजलो करम से आसान करके पेश कर दिए जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता है, और हकीकत शुक्र इसकी कैफियत, इसकी असास और कवायद की वजाहत कर दी। फिर हमने इस बहस का शुक्र की एक और किस्म के साथ इख्तिताम किया जो किस्म बजाते खुद बेमिसाल है और इससे बढ़कर कोई शुक्र नहीं है। वो ये है कि सबसे कमतर चीज़ का शुक्रिया अदा करना, यानी मुनिम हकीकी जो नेमतों का मालिक है, मालिक का बंदों से शुक्रिया अदा करना। यानी इस बुक में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह भी अपने बंदों का शुक्रिया अदा करता है, और क्या ही बेहतरीन इख्तिताम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरे और आप के ऊपर अपना एहसान करे क्योंकि हमने इसकी नेमतों पर इसका शुक्र अदा किया, और हमें बेहतरीन इबादत और दायमी जिक्र की तौफीक दे, और हमें दुनिया और आखिरत में कौले साबित पर ही कायम रखे, और हमें अपनी रहमत से नवाजे, बेशक वो वहाब है। हमें इन लोगों में से बनाए जिन्हें नेमतें दी जाएं तो शुक्र अदा करते हैं, अगर आजमाइश में डाला जाए तो सब्र करते हैं, और जब गुनाह करते हैं तो तौबा इस्तगफार करते हैं। यही तीन किस्म के लोग हकीकत में सआदतमंद हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों की हालत बेहतर कर दे, हमें दीन की समझ बूझ अता करे, हमें और आपको शुक्राने नेमत की तौफीक दे, इन नेमतों को अपनी इताअत में लगाने में मददगार हो और इनसे अपने बंदों को फ़ायदा पहुंचाए। बेशक वही इसका अहल है और वही इस पर कादिर है। और दुरूद व सलाम हो हमारे नबी पर, इनकी आल पर, सहाबा पर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम। सारी कुदरत और ताकत अल्लाह ही के लिए है जो बुलंद और इज़्ज़त वाला है। हमें अल्लाह की इज़्ज़त, अजमत, कुदरत, बादशाही और जलाल के वास्ते से इस बुराई से पनाह मांगता हूँ जिसने पैदा की और फैलाई है, और इन बुराइयों से जो इस ज़मीन के नीचे हैं, और हर जानदार के शर से अल्लाह ही इसको पकड़ने वाला है। बेशक मेरे रब का रास्ता सीधा है, किसी के पास कोई कुदरत और ताकत नहीं सिवाय अल्लाह बुलंद व बरतर अजमत वाले के। वही हर बेघर का ठिकाना है और वही हर डरने वाले की पनाहगाह है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। इसी के ज़रिए से अपनी ज़ात, दीन, अहले औलाद और सब इनामात इलाहिया को बचाता हूँ जिसने मुझ पर किया, और इसके ज़रिए से इबलीस और इसके साथियों से जो घुड़सवार हों, पैदल हों, इनके साथ हों, इनके मददगार हों, और सब इंसानों और जिन्नों और इनकी बुराइयों से निजात पाता हूँ। कुरान में आता है ना सूरह बनी इसराइल में कि शैतान को अल्लाह ने कहा वशारिकुम फिल अमवाली वल औलाद, उसी की तरफ इशारा है कि शैतान कभी हम पे लॉन्ग टर्म हमले करता है, कभी शॉर्ट टर्म करता है, कभी हमारे बच्चों पे आ जाता है, कभी हमारे बड़ों पे आता है। तो हम सब से अल्लाह की पनाह में आते हैं, और इसी के ज़रिए से इसकी सख्ती को टाल दूँ जो मेरे लिए सख्ती और बगावत की कोशिश करे, और इस दुश्मन को इसके ज़रिए से रोकूंगा जो मेरे साथ ज्यादती करेगा, और इसके ज़रिए चाल चलने वाले की चाल को नाकाम बना दूंगा, और जो दगा देगा इसके दगा को ज़ायल कर दूंगा, और पूरी मखलूक में से जो कोई मेरे खिलाफ चारा जोई करेगा तो इसकी इस कोशिश को ख़त्म कर दूंगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम। और इसके ज़रिए से मैं इसे नीचा दिखाऊंगा जो मुझ पर गलबा हासिल करना चाहता है, और इसको जलील कर दूंगा जो मुझे जलील करना चाहेगा। इसके ज़रिए मैं जालिम की कमर तोड़ दूंगा जो मुझ पर कादिर होगा, मैं इस पर कादिर हो जाऊंगा। पूरी मखलूक में से इस शख्स के शर से अपने आप को बचाऊंगा जो मेरे साथ बुराई करना चाहेगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम। अल्लाह की मदद इसकी इज़्ज़त के वास्ते से, इसकी सिफत कुव्वत के वास्ते से, और अल्लाह की पनाह इसकी कुदरत के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी और मौत की हालत में इससे मदद मांगता हूँ। और इस वक्त भी जब मलकुल मौत मेरे पास आएगा, हालत निज़ाम और मौत की हिचकियों के वक्त भी जिक्र से इलाज करूँगा और इससे अपने रूह और जिस्म की हिफाजत करूँगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब मैं कब्र में डाला जाऊंगा और मेरे साथ मेरे आमाल के अलावा कुछ ना होगा, सोचें ज़रा उस वक्त को, सिर्फ मैं और मेरे आमाल मेरी कब्र में। इस वक्त इसी ज़िक्र के ज़रिए से मदद मांगूंगा जब मेरे नामे आमाल को नशर किया जाएगा मैदाने हशर में। मैं इसके ज़रिए से मदद मांगूंगा और मैं अपने गुनाहों और ख़ताओं को देख लूँगा जब क़्यामत के रोज़ ज़्यादा देर ठहरना होगा, प्यास की शिद्दत होगी और जब मुझे शदीद डर और खौफ होगा, अमल का वज़न हो रहा होगा, तो इस जिक्र के ज़रिए मैं अपने नेक अमल का वज़न बढ़ाऊँगा और इसके ज़रिए मैं वहाँ साबित कदम रहूँगा और औलिया अल्लाह के साथ पुल सरात पर से गुजर जाऊँगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम। इस कलमे के ज़रिए नेकुकार लोगों के साथ जन्नत में ठिकाना हासिल कर लूँगा। इसे मुझसे इतनी बार कहना अल्लाह कबूल फरमाए जितनी बार कहने वालों ने कहा और मुस्तकबिल में कहते रहेंगे, इस दुनिया की इब्तिदा से इसकी इंतहा तक। देखिए, दुआ मांगने का भी अंदाज़ होता है ना, थोड़े लफ्ज़ों में इंसान ज़्यादा चीज़ मांगता है। इतनी मरतबा जितनी मरतबा अल्लाह ताला की किताब ने इसे शुमार किया और इसके इल्म ने जिस मकदार में इसका अहाता किया, बल्कि इसे दुगना, चार गुना, बल्कि आठ गुना और जितनी बार गिन चुका हूँ इससे भी कहीं ज़्यादा मर्तबा, हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला इस कलमे को मेरी तरफ़ से कबूल फरमा ले जो बिल्कुल शुमार से बाहर हो। इतनी मर्तबा के जिनका शुमार अल्लाह के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, इसी के इल्म में इसकी मकदार आ सकती है और अल्लाह ताला के अलावा किसी और के इख्तियार में कोई कुदरत और ताकत नहीं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब इस जुमले का मतलब क्या होता है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला का? इसका मतलब यह कि दुनिया में कोई किसी को काम कोई करने की कुदरत ताकत है ही नहीं जब तक अल्लाह ताला ना दे। और आप देखिए कि मैंने आपने भी ये टॉपिक पढ़ा, ये चीज़ की, तो इसमें भी क्या था, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अगर अल्लाह आपको मुझे ताकत ना देता तो क्या हम इसके लिए सफ़र करते, बैठते, उठते? कितनी ज़िंदगी की चीज़ों को इंसान पीछे डालकर आता है और अल्लाह ताला फिर उससे ये काम ले भी लेता है। तो अब मेरा आपका काम क्या है कि इस टॉपिक को पढ़ने का हमारी अमली ज़िंदगी पे असर हो। अब देखिए, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके बाद इम्तिहान होता है ना, टेस्ट होता है, पेपर्स होते हैं दुनियावी तौर पे, तो यही तरीक़ाकार है ना। इस टॉपिक को पढ़ने का टेस्ट किताबों में नहीं है, कापी के सफ़ों में नहीं है, आपकी मेरी ज़िंदगी में दिन रात होने वाले मुआमलात की सूरत में होगा। जब कोई तकलीफ़ आए इसको सोचिएगा, जब खुशी की किसी महफिल में हो इस टॉपिक को सोचिएगा, ये शुक्रगुजारी है, मैं अल्लाह को नाराज़ करके शुक्र कर रही हूँ, अल्लाह ने नेमत दी मैं उसकी नाफरमानी कर रही हूँ। और जब गम, दुख, बीमारी, परेशानी आए, क्या मैं इतनी बेसब्री हूँ कि इतनी थोड़ी सी तकलीफ़ पे घबरा जाऊँ? आप देखिएगा, आप दिन में 10 दफ़ा इस बुक का टेस्ट देंगे। इस टॉपिक का अमली इम्तिहान आपकी डे टू डे लाइफ में होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको मुझे इसकी तौफीक दे कि हम अमल में शुक्र को कभी ना भूलें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, आमीन। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا ربي
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب،
شكرا يا رب،
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب،
شكرا يا رب،
يا منزل القرآن. خالق الإنسان يا ربي يا رحمن. شكرا يا رب،
شكرا يا ربي، شكرا.